मेरे युवा मित्रों, सप्रेम अभिवादन। AFEIS के आज 15 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं दोस्तों सुधीर कुमार का, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने 15 मार्च से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं देता हूं। तो सूचनाएं इस तरह से हैं कि शनिवार और रविवार यानी कि दो दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स है आपको शनिवार को यानी कि कल एज इट इज़ मिलेंगी, जैसे कि अभी तक मिलती रही हैं। साथ ही आपको योजना के दो आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश में, और कुरुक्षेत्र के भी आपको दो आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। इसके साथ ही एक हम लोग वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है ताकि आप मुख्य परीक्षा का भी अभ्यास साथ ही साथ करते रहें। और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। मित्रों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में महिलाओं की स्थिति, इस विषय पर कुछ बातें आप सबसे करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला पर अभी निर्णय नहीं दिया है। उसने अपने इस मामले को, अभी तक तो 5 जजों की जो संविधान पीठ थी इस मामले को देख रही थी, अब उसे 7 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया है। इसका साफ मतलब है, आप देखिए कि अभी तक 5 जज इसे देख रहे थे, अब वो 7 जजों को सौंप दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जजेस को ये लगा है कि नहीं, यह मामला बहुत संवेदनशील है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इसका जबरदस्त प्रभाव भारतीय समाज पर हो सकता है, तो बेहतर होगा कि इसे और भी अच्छे तरीके से सोच विचार करके देखा परखा जाए, चारों तरफ से इसके बारे में बात सुनी जाए और तब फिर कोई फैसला दिया जाए। सबरीमाला के बारे में सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन रहा है। मैं जब महिलाओं की स्थिति पर आऊंगा तब हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, रफाल जो विमान खरीदे गए थे, लड़ाकू विमान, उसके बारे में अपना फैसला दिया है। फैसले के बारे में अखबारों में काफ़ी कुछ लिखा गया है, न्यूज़ में भी आपने सुना ही होगा, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसने सरकार के निर्णय को बिल्कुल सही ठहराया है, लेकिन यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है रफाल से ही जुड़ा हुआ, जो अलग से मामला था लेकिन वो चूंकि इसी से ही कहीं ना कहीं लिंक भी था, तो इसीलिए इसी के साथ ही न्यूज़ में छपा भी है। और वो ये है कि रफाल विमान में खरीदी को लेकर के जो हमारे प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता अप्रूव्ड तो नहीं है आप यूं कह लीजिए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के उस समय जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे थे। और जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, वो है चौकीदार ही चोर है, चौकीदार चोर है। चौकीदार इसका मतलब है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अपने को एक तरीके से प्रथम सेवक कहते हैं, है ना, मैं देश का प्रथम सेवक हूं और प्रधानमंत्री एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होता ही है। और इसी तरह से वो कहते थे कि वो, मैं एक देश का एक चौकीदारी करने वाला हूं, देश का ध्यान रखने वाला हूं, देश की रक्षा करने वाला हूं, और प्रधानमंत्री की स्थिति बिल्कुल ऐसी होती ही है। तो रफाल विमान में ये मानना था कांग्रेस पार्टी का कि बहुत अधिक भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत अधिक कीमत में ये विमान खरीदे गए हैं, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि चौकीदार ही चोर है। अब सोच करके देखिए कि जब माझी नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए, अगर चौकीदार ही चोरी करने लगे तो फिर क्या होगा। तो इस स्थिति का उन्होंने बार बार चुनाव में जिक्र किया, चुनाव परिणाम जो सामने आपके हैं आप समझ सकते हैं कि जनता ने उनके इस वाक्य को स्वीकार नहीं किया, आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बीच में हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में याचिका को स्वीकार कर लिया, तब उन्होंने ये कहने लगे, आपके राहुल गांधी जी ये कहने लगे कि इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भी यह मान रहा है कि चौकीदार चोर है। ये एक तरीके से गलत बयानी उनकी हो गई। इसको लेकर के फिर बाद में राहुल गांधी जी ने माफी मांगी, उनका माफीनामा भी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया है, और साथ ही साथ हिदायत भी दी है कि जब भी इस तरह की बातें कही जाएं तो उसके बारे में संयम बरता जाना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। अब आप देखिए कि जो संयम से काम लेना चाहिए, ये राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने कही है कि ठीक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो प्रतिपक्ष होगा ही, और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी ही क्यों ना, कोई भी राजनीतिक दल हो, हम अब इसको जनरलाइज कर दे रहे हैं। तो जब वो दूसरे की आलोचना करते हैं तो आलोचना करते समय दो बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला तो यह है कि जो आलोचना है वो तथ्यपूर्ण हो, तथ्यात्मक हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उल जलूल बात कर रहे हैं, और खासकर इस तरह के आरोपों में जहां भ्रष्टाचार का मामला हो, जहां चरित्र का मामला हो, जहां निजता का मामला हो, वहां तो हमें विशेष रूप से संवेदनशील होना ही चाहिए। और दूसरी बात है कि भाषा के स्तर पर भी हमें संयम बरतनी चाहिए कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, तो ये संयम की बात उन्होंने कही। मैं मित्रों सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का, या यूं कह लीजिए कि इस अनुरोध का, जो भी आप कह लें, इस टिप्पणी की चर्चा यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आपका फोर्थ पेपर है जनरल स्टडीज मेन्स में, फोर्थ पेपर जो एथिक्स और आपके इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है या ये जो जजमेंट जो उन्होंने पारित किया है उस पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और ये कम से कम एक दो साल तक तो आपकी मदद कर सकता है 2020 के एग्जामिनेशन में, यहां तक कि 2021 के एग्जामिनेशन में, उससे आगे भी ये काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस घटना को आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील गए हुए हैं। यहां मैं केवल दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, दो तीन बातें बस अभी, और बीच बातें जब हमारे सामने आएंगी ब्रिक्स की तब हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तो यह है कि जो ब्रिक्स का इस बार का जो आदर्श नारा है आप कह लीजिए, वह है अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। मतलब कि हम जो आने जो भविष्य है वो एक नया भविष्य बने, तो आर्थिक विकास को अब हम एक नए संदर्भों में देखने की कोशिश करेंगे, जो हमारा भविष्य हो वो एक नए किस्म का हो। तो सीधी सी बात है कि इसमें पर्यावरण और एक दूसरे से सहयोग और इन सारी बातें शामिल होंगी, तो ये इसका नारा है, आपके दिमाग में रहना चाहिए, कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने देखिए वहां संबोधित करते हुए एक अच्छा वाक्य कहा, और वो ये कहा कि अब के समय में जो इनोवेशन है वो आर्थिक विकास का आधार बन चुका है। इनोवेशन जो नवाचार है, आज वही देश आर्थिक विकास कर सकता है जो नवाचार करेगा, इनोवेशन करेगा। इसका मतलब है कि मुझे लग रहा है कि सन 2020 में मेन एग्जामिनेशन में जो इनोवेशन है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में उभर रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले जो इनोवेशन इंडेक्स भी आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भारत की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, और लगातार आप देख रहे हैं कि अटल टिंकरिंग लैब की बात हो रही है, कल न्यूज़ में भी ये शब्द आया था। तो भारत काफ़ी कोशिश कर रहा है कि इनोवेशन के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। तो इस तरह से मुझे मेंस की दृष्टि से यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट मालूम पड़ता है। एक लास्ट पॉइंट और कि ब्रिक्स में आतंकवाद के खिलाफ, देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी जहां भी जाते हैं विश्व मंच पर आतंकवाद के खिलाफ वो हमेशा बोलते हैं और उस पर जोर देते हैं कि पूरी दुनिया को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। तो ब्रिक्स ने इसके लिए 5 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं, 5 कार्य समूह, जो आतंकवाद से जुड़े हुए जो अलग अलग जो मुद्दे होते हैं उन पर निगरानी रखेंगे, उपाय सुझाएंगे, और भी जो कुछ भी कार्रवाइयां हो सकती हैं वो करेंगे। तो बस एक वाक्य आपके दिमाग में हो कि ब्रिक्स ने आतंकवाद का विरोध करने के लिए, आतंकवाद की रोकथाम के लिए आप कह लीजिए कि 5 कार्य समूह का गठन किया है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और हम लोग बात करेंगे महिलाओं की स्थिति। इस विषय को मैंने खासकर इस आधार पर चुना है कि सबरीमाला मंदिर के मामले में अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आइए हम थोड़ा सा उसे देखते हैं। इसे 5 से 7 बेंचों वाले को सौंप दिया गया, संविधान पीठ को सौंपा गया, निर्णय नहीं दिया गया। उसके पीछे रीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट चाहती तो निर्णय दे सकती थी, जब उसने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जैसे मामले पर निर्णय देने की, आप ये कह लीजिए कि कायिक जोखिम भी आप कह सकते हैं, हिम्मत भी आप कह सकते हैं, दिखाई है, तो ये मामला उतना संवेदनशील नहीं था। लेकिन संवेदनशील दूसरे अर्थों में था, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, ठीक है ये मामला सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के है, लेकिन हम इसे एक प्रकार से महिलाओं के समानता का अधिकार और जीवन के अधिकार से जोड़ करके देखते हैं। यानी कि अब इसमें केवल सबरीमाला के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का ही मामला नहीं है, बल्कि उन सब मामलों को एक साथ मिलाकर हमें देखना होगा जहां महिलाओं के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिक का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो फिर पर्सनल लॉ ही क्यों न हो। बकायदे उन्होंने कुछ कोट भी किए हैं कि कहां कहां इस तरह के और भेदभाव उन्हें दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मस्जिद और दरगाह, में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, तो क्यों नहीं उस विषय को भी इसमें शामिल करके उस पर भी विचार किया जाए। यहां तक कि जो पारसी महिलाएं हैं अगर गैर पारसी से विवाह करती हैं तो उन्हें भी, उनका भी जो प्रवेश है उनके अग्रहारी में रुक जाता है, वो वहां प्रवेश नहीं कर सकती। ये एक स्थिति जो दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय है उसमें भी महिलाओं की खतना प्रथा का मामला है। तो इस तरह से आप देखें कि दूसरे समूहों में भी महिलाओं के साथ इस तरह के भेदभाव हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इन मामलों पर भी विचार किया जाना चाहिए और विचार करके फिर एक महिला संपूर्ण एक वर्ग मान लिया जाए और उसे ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के फ्रेम में निर्णय किया जाना चाहिए। और देखिए कि जब हम भारतीय फ्रेम में निर्णय करने की बात करते हैं, संविधान के फ्रेम में, तो वहां हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता और समानता। धार्मिक स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता है, आप महिला को फिर कैसे सबरीमाला मंदिर में जाने से रोक सकते हैं, मुस्लिम को कैसे, मुस्लिम महिला को आप दरगाह और मस्जिद में जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि वहां धार्मिक स्वतंत्रता है। और फिर समानता में स्त्री और पुरुष, अगर पुरुष जा सकता है तो स्त्री भी जा सकती है, या तो दोनों ही ना जाएं। तो मित्रों, अब ये जो मामला है मैं समझता हूं कि काफी व्यापक हो गया है और जब भी इसका निर्णय आएगा तो जो समान नागरिक संहिता बनाने की बात जो हो रही है भारत में उस पर इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन डिपेंड इस बात पर करेगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। अब मैं आपके सामने एक तथ्य और रखना चाहूंगा, वो ये कि जो महिलाओं की जो स्थिति है ये आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली मेन एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर्स के 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई साल आपको नहीं मिलेगा जब कम से कम 2 क्वेश्चन न पूछे गए हों। 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस में बकायदे मेंशन किया हुआ है, वीमेन एम्पावरमेंट, लेकिन मेंशन तो वहां और भी बहुत कुछ होता है। सवाल यह है कि जो वहां मेंशन किया गया है उसकी कितनी वेटेज एग्जामिनेशन पेपर में मिलती है। तो महिलाओं को हमेशा, महिलाओं से संबंधित जो इश्यू रहे हैं हमेशा उन्हें पर्याप्त स्थान मिला है। और याद रखिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिर परंपरागत तरीके के क्वेश्चन नहीं होते हैं कि उनका क्या स्थान रहा है और हमारी परंपराएं क्या रही हैं और ग्रंथों में क्या कहा गया है, और सच पूछे तो आपके उत्तर में भी इनकी कोई भूमिका नहीं है। वर्तमान स्थितियों को ही ध्यान में रखकर के क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। मैं खासकर कुछ ऐसे प्रश्न जो 2019 के मेन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में यह क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक पर आपको किस एंगल से तैयारी करनी चाहिए। देखिए टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट होता ही है मित्रों सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उसके साथ ही साथ यह भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप अब उस टॉपिक पर तैयारी किस तरीके से करेंगे। अगर आप बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो आप मान करके चलिए कि आप सही तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है उसमें क्या प्रश्न पूछा गया है महिलाओं के ऊपर। प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण जनसंख्या को नियंत्रित करने की कुंजी है। 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का है और बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। इम्पावरिंग वीमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आप देखिए कि है ये पॉपुलेशन के ऊपर जो बहुत ही सामान्य सा है, लेकिन यह बता दिया गया है कि अगर आप महिलाओं को एम्पावर कर देते हैं तो फिर महिला में इतनी क्षमता होती है, उसकी समझदारी होती है कि वो जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकती है। इसके बाद इसी पेपर में आप देखिए कि टोटल 20 क्वेश्चन हैं और उस 20 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है पेपर 1 में ही, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं। यह 250 शब्दों में आपको लिखना है, 15 नंबर का है। What are the continued challenges for women in India against time and space? देखिए जो टू मी जो आंदोलन चला था कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल करंट की दिखाई दे रही होंगी। फिर जो जनरल स्टडीज मेंस का जो सेकेंड पेपर है आप देखिए, जो आपके पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस इनसे रिलेटेड जो पेपर है उसमें वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है, टिप्पणी कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हैड ए लिमिटेड इंपैक्ट ऑन द पैट्रियकल करेक्टर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, कमेंट। ये 15 नंबर का है। स्थानीय सुशासन में आप देखते हैं कि 33% का रिजर्वेशन है हमारे पंचायतों में, लेकिन वहां महिलाएं तो भले ही सरपंच बन जाएं, लेकिन पता लगा कि जो सरपंची कर रहे हैं वो उनके पति देव ही कर रहे हैं, और पिछले साल इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अखबारों में छपी थी, खासकर उसको बेस बना करके ये प्रश्न तैयार किया गया है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है, खासकर महिलाओं से संबंधित टॉपिक में, कि आप उन ट्रेडिशनल हिस्सों को छोड़ दीजिए, अपना बेस बनाने के लिए थोड़ी बहुत बातें आपके पास होनी चाहिए, आपकी जानकारी में होनी चाहिए, लेकिन देखें कि वर्तमान में क्या सिचुएशन चल रही है। अभी जो सबरीमाला का मंदिर है और जो मैंने दूसरी समस्याओं के आपके सामने रखी हैं जो दूसरे समुदायों में है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, और डेफिनेटली जो डिसीजन आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उसका भारतीय समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। और दोस्तों, अब इससे पहले कि मैं आज के अपने डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूं, दो दिनों के बाद आप सबसे चूंकि मुलाकात होगी, तो इन दो दिनों के लिए आप सब मेरी ओर से शुभकामनाएं स्वीकार करें और मुझे इजाजत भी दें। आप सबका अभिवादन, नमस्कार।